पृष्ठ संख्या 5 भूमिका। इस पुस्तक में 2 निबंध हैं, बहुजातीय राष्ट्रीयता और साहित्य, और साहित्य में देसी भाषाओं की प्रतिष्ठा। इन निबंधों में जिन समस्याओं का विवेचन है उनका संबंध भारतीय साहित्य से है और भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य से है। भाषा के बिना साहित्य का अस्तित्व असंभव है। मानव समाज के बिना भाषा का अस्तित्व असंभव है। इस मानव समाज के गठन के रूप बदलते रहते हैं। पूंजीवादी समाज, उससे पहले सामंती समाज और उससे भी पहले कबीलाई समाज, इनमें सामाजिक गठन के रूप अलग अलग तरह के होते हैं। किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखना हो, इस बात पर विचार करना आवश्यक होगा कि उस भाषा के व्यवहार करने वाले मानव समाज के गठन का रूप कौन सा है, वह मानव समाज विकास की किस अवस्था में है। इसकी जानकारी के बिना उसकी भाषा के साहित्य के इतिहास का विवेचन नहीं किया जा सकता। उस साहित्य की सामाजिक विषय वस्तु का ऐतिहासिक महत्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। भारत के सामाजिक विकास की प्रमुख समस्या है यहाँ विभिन्न भाषाएं बोलने वाली जातियों के निर्माण की समस्या। इस समस्या का विशिष्ट रूप यह है, इन जातियों का निर्माण अंग्रेजी राज कायम होने से पहले हुआ या उसके बाद हुआ। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं आधुनिक साहित्य का निर्माण अंग्रेजी राज कायम होने के बाद हुआ। इसके पहले मध्यकाल है। मध्यकाल में आधुनिक जातियों का अस्तित्व नहीं है। इन इतिहासकारों की समझ में जातियों का निर्माण अंग्रेजी राज कायम होने के बाद हुआ। ऐसे इतिहासकार किसी न किसी रूप में अंग्रेजी राज की प्रगतिशील भूमिका स्वीकार करते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पुरानी व्यवस्था कबीलाई अथवा सामंती व्यवस्था ध्वस्त करके नई व्यवस्था अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था कायम की अथवा उसे कायम करने के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की और इस तरह जातियों का निर्माण संभव। पृष्ठ संख्या 6 सोवियत संघ और चीन में भारतीय भाषाओं के इतिहास लिखने की योजनाएं बनाई गई हैं। वहां के इतिहासकारों को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। अंग्रेजी राज में भारत की पराधीनता उसकी भाषाओं के साहित्य के विकास के लिए लाभकारी थी या हानिकारक, इस प्रश्न का जो भी उत्तर वे दे उन्हें एशियाई संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि चीन जैसे देशों में अंग्रेजों या उनके गोरे भाई बंधुओं का सीधा प्रभुत्व कायम नहीं हुआ तो वहां जातियों का निर्माण हुआ या नहीं, और हुआ तो कब हुआ। अंग्रेजों से पहले भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया और यहां अपना राज कायम किया, क्या इससे भारतीय समाज के विकास में कोई महत्वपूर्ण सहायता मिली। तुर्कों और मंगोलों ने चीन और रूस पर हमला किया था, वहाँ अपना राज कायम किया था, क्या इससे वहाँ के समाजों के विकास में कोई महत्वपूर्ण सहायता मिली थी। पूर्वी यूरोप और एशिया के संदर्भों में इन प्रश्नों पर विचार करने से भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं सुलझाने में सहायता मिलेगी। समाज और साहित्य का इतिहास लिखते समय क्या धर्म और सांप्रदायिक मतों को विवेचन का आधार बनाना चाहिए। काल निर्धारण में धर्मों और मतों का ध्यान रखा जाता है, यथा बौद्ध काल मुस्लिम काल का विवेचन होता है। इनके समानांतर हिंदू काल होना ही चाहिए, पर ईसाई काल नहीं, न भारत में है न यूरोप में। कलाओं का नामकरण भी इसी पद्धति के अनुरूप है, यथा बौद्ध स्थापत्य, मुस्लिम स्थापत्य, हिंदू स्थापत्य, पर हिंदू संगीत मुस्लिम संगीत नहीं है। क्यों नहीं है? हिंदू संगीत है, मुस्लिम हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है। क्या संगीत संस्कृति से बाहर की चीज है? विभिन्न कलाओं के व्यापक संदर्भ में साहित्य के इतिहास पर विचार किया जाए तो समस्याएं सुलझाने में मदद मिलेगी। हिंदू संगीत और मुस्लिम संगीत की जगह हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, भारतीय संगीत के ये दो रूप प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्तान और कर्नाटक जातीय प्रदेश है। जातीय शब्द पर आपत्ति हो तो इन्हें भौगोलिक इकाई मान लीजिए। संगीत में सांप्रदायिक विभाजन नहीं हुआ। इसका कारण यह हो सकता है कि संगीत का इतिहास विश्वविद्यालयों में पढ़ाया न जाता था, इसलिए वह पेशेवर इतिहासकारों के सांप्रदायिक विवेचन से बच गया। भारत में नृत्य के अनेक रूप प्रचलित हैं, बौद्ध काल से लेकर अब तक प्रचलित रहे हैं। इनमें बौद्ध नृत्य हिंदू या मुस्लिम नृत्य जैसी चीज नहीं है, लेकिन इसी धर्म निरपेक्ष नृत्य की मुद्राएं जब शिल्प में अंकित होती हैं तो वे हिंदू या बौद्ध हो जाती हैं। दोष न तो शिल्पकारों का है, न नर्तकों और नर्तकियों का, दोष है इतिहासकारों का। किसी भी भाषा के साहित्य का निर्माण अन्य भाषाओं के साहित्य के नितांत पृष्ठ संख्या 7 अलगाव की अवस्था में नहीं होता। लोग यूरोपियन साहित्य की बात करते हैं, भारतीय साहित्य की बात भी करते हैं। यूरोप राष्ट्र नहीं है, भारत राष्ट्र है। लोग भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं, यूरोप के स्वाधीनता आंदोलन की बात नहीं करते। शायद उन्हें ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी। यूरोप में साझा मंडी है, पर यूरोप का कोई राष्ट्रीय अर्थतंत्र नहीं है। यूरोपियन साहित्य यूरोप का राष्ट्रीय साहित्य नहीं है, भारतीय साहित्य भारत का राष्ट्रीय साहित्य है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ही भाषा अंग्रेजी का व्यवहार होता है। ब्रिटेन के अंग्रेजी साहित्य का इतिहास अलग लिखा जाता है, अमेरिका के अंग्रेजी साहित्य का इतिहास अलग। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अनेक देशों में स्पेनिश बोली जाती है। ये सब पृथक देश है, किसी राष्ट्र के प्रदेश नहीं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक ही भाषा जर्मन बोली जाती है, पर दोनों अलग स्वतंत्र देश हैं। नॉर्वे, हॉलैंड, जर्मनी आदि देश एक दूसरे से मिलती जुलती जर्मन समुदाय की भाषाएं बोलते हैं। इटली, फ्रांस, स्पेन आदि देश एक दूसरे से मिलती जुलती लैटिन समुदाय की भाषाएं बोलते हैं। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के देशों में स्पेनिश और पोर्चुगीज न केवल लैटिन समुदाय की भाषाएं हैं, वरन वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। पर जर्मन या लैटिन समुदायों के भाषा क्षेत्रों में बहुजातीय राष्ट्रीयता का विकास न तो यूरोप में हुआ न अमेरिका में। ब्रिटेन में अंग्रेजी के अलावा वेल्स में साहित्य रचा गया है, पर अंग्रेजी साहित्य केवल अंग्रेज जाति का साहित्य है, ब्रिटिश जाति के साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया। ऐसे इतिहास में अंग्रेजी के अलावा वेल्स साहित्य का विवरण भी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में गोरे और काले अमेरिकियों के अलावा वहाँ के आदिवासी रेड इंडियन भी रहते हैं। एकाद जगह उनकी भाषाओं को स्कूली शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता भी दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुजातीय राष्ट्र है, पर उसके साहित्य का इतिहास केवल एक जाति के साहित्य का इतिहास है। भारत में बहुजातीय राष्ट्रीयता का विकास मानव समाज की विशिष्ट उपलब्धि है। पूंजीवादी देशों में स्विट्जरलैंड बहुजातीय राष्ट्र है, समाजवादी देशों में सोवियत संघ बहुजातीय राष्ट्र है। बहुजातीय राष्ट्रीयता के विकास की समस्या समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या है। उसका जो महत्व भारत के लिए है वह अन्य किसी देश के लिए नहीं। राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का निर्माण 1917 की क्रांति के बाद हुआ। सोवियत इतिहासकार जब अपने बहुजातीय देश का इतिहास लिखते हैं, तब उसमें विभिन्न जातियों के सन 17 से पहले वाले इतिहास को शामिल कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 8। हम भारतीय साहित्य का इतिहास लिखे तो उसमें सन 47 से पहले और बाद के सिंधी साहित्य का इतिहास शामिल करें या नहीं। मान लीजिए भारतीय साहित्य नहीं केवल बंगला साहित्य का इतिहास लिखना है, इसमें बांग्लादेश में रचा हुआ साहित्य शामिल किया जाएगा या नहीं। ऐसे ही पंजाबी साहित्य का इतिहास लिखना हो तो उसमें पश्चिमी पंजाब में रचा हुआ सन 47 के बाद का साहित्य शामिल किया जाएगा या नहीं। भारतीय साहित्य के इतिहास का विवेचन वैसे तो किसी भी विचारधारा के इतिहासकारों के लिए चुनौती है, मार्क्सवादी इतिहासकारों के लिए वह विशेष रूप से चुनौती है, क्योंकि जातियों की निर्माण प्रक्रिया का विवेचन मार्क्सवादी समाज शास्त्र की विशेषता अवश्य है, पर बहुजातीय राष्ट्र की निर्माण प्रक्रिया का विवेचन उसमें नहीं के बराबर है। इतिहासकार चाहे मार्क्सवादी हो चाहे गैर मार्क्सवादी, भारतीय साहित्य का इतिहास लिखेगा तो उसे विभिन्न भाषाओं के साहित्य के आपसी संबंधों पर ध्यान देना होगा। यदि उसे किसी एक भाषा का साहित्य लिखना हो तो भी अन्य भाषाओं के साहित्य से उसके संबंधों पर ध्यान देना होगा। वास्तविकता यह है कि भारत की किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास सही ढंग से अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही लिखा जा सकता है। जो लोग भारत में अनेक जातियों का अस्तित्व नहीं मानते वे भी यहाँ अनेक भाषाओं का अस्तित्व मानते हैं। साहित्य में इन भाषाओं की प्रतिष्ठा एक ही समय पर क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न करते ही भारत के विभिन्न प्रदेशों में सामाजिक विकास की विषम गति स्पष्ट हो जाएगी। विभिन्न प्रदेशों में सामाजिक विकास की विषम गति वास्तव में यहाँ की जातियों के सांस्कृतिक विकास की ही विषम गति है, अतः वह बहुजातीय राष्ट्रीयता के विकास की विषम गति भी है। किसी एक भाषा के साहित्य का इतिहास लिखते समय इस समस्या पर विचार करना आवश्यक होगा, भारतीय साहित्य का इतिहास लिखते समय भी। दोनों निबंधों के आरंभ में कुछ समस्याएं मैंने गिना दी है, अंत में निष्कर्ष दे दिए हैं। यह पाठकों की सुविधा के लिए है। समस्याओं और निष्कर्षों के बारे में अपनी राय कायम करते समय पूरे विवेचन को ध्यान में रखना उचित होगा। भारतीय साहित्य के इतिहास से संबंधित अनेक प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ कुछ मूल समस्याओं पर ही विचार किया गया है। ये मूल समस्याएं नहीं है, गौण समस्याएं हैं। यह भी कुछ लोगों की राय हो सकती है। साहित्य के इतिहास विवेचक बहुजातीय राष्ट्रीयता अथवा साहित्य में देशी भाषाओं की प्रतिष्ठा पर जरा कम विचार करते हैं। उनकी परंपरा के अनुयायी कह सकते हैं साहित्य के लिए ऐसी समस्याएं हैं ही नहीं, न मूल समस्याएं हैं न गौण समस्याएं हैं। हो सकता है साहित्य के लिए न हो पर साहित्य के इतिहास के लिए अवश्य हैं। शाश्वत मूल्यों वाले, लोकोत्तर आनंद देने वाले, विशुद्ध, पृष्ठ संख्या 9, कलात्मक सौंदर्य वाले साहित्य का कहीं इतिहास होता है। जहाँ साहित्य का इतिहास है वहाँ ऐसी समस्याएं भी होंगी, चाहे भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा जाए चाहे हिंदी साहित्य का, ऐसी समस्याओं पर विचार करना अनिवार्य है। मूल समस्याएं यही है, अन्य नहीं है, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। मेरे निष्कर्ष सही है, ऐसा आग्रह और भी नहीं है। मैं जो कुछ कहूँगा उसे आप मान लेंगे, ऐसा मैं नहीं सोचता। आप जो कहेंगे उसे मैं मान लूँगा, ऐसा आप भी न सोचें। पर विचार विमर्श से धारणाएं बदल सकती हैं, आपकी और मेरी भी। जिन्हें बदलना जरूरी न हो उनका और अधिक परिष्कार संभव है। ये निबंध लगभग 10 वर्ष पहले कौमू विद्यापीठ की पत्रिका भारतीय साहित्य में प्रकाशित हुए थे। कुछ अंश जो मुझे अनावश्यक लगे मैंने निकाल दिए हैं। जहाँ तहाँ अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्द बदल दिए हैं या नए शब्द जोड़ दिए हैं। अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन मैंने नहीं किया। नई दिल्ली, 8 जून 1986, रामविलास शर्मा।